ہمیشہ دنیا میں جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں یا جو ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں اپنے آپ کو، حالانکہ میں مانتا نہیں کہ وہ ڈیولپڈ ہیں، لیکن تتھاکتھت ڈیولپڈ ہیں، سو کال ڈیولپڈ ہیں، وہ کبھی بھی غریب دیشوں کو پونجی دیتے نہیں، بلکہ غریب دیشوں کی پونجی اپنے یہاں کھینچ کر لے جاتے ہیں. اور وہ کیسے چلتا ہے؟ انک ٹاگ سے کچھ فگرز ہیں میرے پاس، یونائٹیڈ نیشنز کمیشن آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ، ان کی کچھ رپورٹس میرے پاس ہیں. تو انک ٹاگ کی رپورٹ ہے 95-96 کی، لیٹسٹ تو نہیں کہہ سکتا، 95-96 کی ہے، اس کے بعد مجھے آئی نہیں تو اس لیے میں آگے کی بات کر نہیں سکتا. 95-96 کی انک ٹاگ کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ 95-96 میں دنیا کے امیر دیشوں سے غریب دیشوں میں کتنی پونجی گئی، اور اسی سمے میں دنیا کے غریب دیشوں سے امیر دیشوں میں کتنی پونجی آئی، اس کے اس میں کچھ فگرز ہیں. تو غریب دیشوں سے جو پونجی امریکہ میں چلی گئی، یورپ میں چلی گئی، اس کی بات تو بعد میں، پہلے ان کے دیشوں سے آئی کتنی غریب دیشوں میں. تو ڈیولپنگ کنٹریز کی سنکھیا انکٹار سے اس میں 120 مانی جاتی. تو 120 غریب دیشوں میں، ڈیولپنگ کنٹریز میں جو پونجی آئی ایک سال میں، وہ قریب ہے $500 بلین. اور اس میں کیا کیا ہے؟ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، فارن لون ہے، فارن ایڈ ہے، تینوں چیزیں ہیں، قرضہ ہے، ودیشی پونجی ہے، اور ودیشی سہایتا ہے. تینوں طرح کی پونجی ملا کے $500 بلین آیا غریب دیشوں میں. اور اسی سمے میں، اسی ایک سال میں، ان دیشوں سے کتنا چلا گیا امریکہ اور یورپ میں، تو اس کے فگرز ہیں $725 بلین. معنی $725 بلین غریب دیشوں سے امیر دیشوں میں چلا گیا، اور $500 بلین امیر دیشوں سے غریب دیشوں میں آیا. تو کون کس کو پونجی دے رہا ہے، اور کتنے بڑے لیول پہ دھوکہ چل رہا ہے ساری دنیا میں؟ امیر دیش کبھی پونجی کسی کو دے نہیں سکتے، یہ پونجی جو ہے غریب دیشوں سے امیر دیشوں میں جاتی ہے. ایک ساؤتھ ساؤتھ کمیشن ہے، اور ساؤتھ ساؤتھ کمیشن کے سیکرٹری جنرل ہوا کرتے تھے بہت دنوں تک ڈاکٹر منموہن سنگھ. 1986-1989 کے بیچ میں وہ ساؤتھ ساؤتھ کمیشن کے سیکرٹری جنرل تھے. مانے ہندوستان میں فائنینس منسٹر بننے کے پہلے وہ ہندوستان کی تین تین سرکاروں کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں، ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر رہ چکے ہیں، دلی اسکول آف اکنامکس کے بڑے بھاری ارتھشاستری ہیں، ساری دنیا میں ان کی بڑی بھاری عزت بھی ہے ایک اچھے ارتھشاستری کے روپ میں. تو یہ ویکتی جب ہندوستان میں ایک ارتھشاستری کے روپ میں کام کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور جب یہ آدمی وت منتری ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تو جب یہ ساؤتھ ساؤتھ کمیشن کے سیکرٹری جنرل ہوا کرتے تھے تو انہوں نے ایک کیس اسٹڈی کیا ہے، وہ کیس اسٹڈی میرے پاس ہے اور اس پر میں نے کئی لیکھ بھی لکھے تھے. وہ کیا ہے کہ 86-89 کے بیچ میں دنیا کے 17 غریب دیشوں کے بارے میں انہوں نے کچھ آنکڑے دیے ہیں، جن میں ہمارا دیش ہے، پاکستان ہے، برما ہے، بنگلہ دیش ہے، ملیشیا ہے، وغیرہ وغیرہ، نزدیک کے غریب دیش ہیں. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 17 غریب دیشوں میں 1986-1989 کے بیچ میں کتنی پونجی آئی ہے، اور ان دیشوں سے کتنی پونجی چلی گئی ہے کیپیٹل فلائٹ کے روپ میں، اس کا انہوں نے اسٹیٹسٹکس دیا. تو وہ اسٹیٹسٹکس ہے کہ 86-89 کے بیچ میں 17 غریب دیشوں میں امیر دیشوں سے $215 بلین آیا، جس میں ایف ڈی آئی ہے، فارن لون ہے، فارن اسسٹینس ہے، فارن ایڈ ہے، سب ہے، سارا ملا. تو $216 بلین آیا، اور چلا کتنا گیا 1986-89 کے بیچ میں ان غریب دیشوں سے امیر دیشوں میں، جو پیسہ چلا گیا وہ کتنا ہے؟ تو وہ ہے $345 بلین. تو یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پونجی آتی نہیں ہے کبھی اس سے. تو جو آدمی وت منتری بننے کے پہلے یہ سدھ کرتا رہا ہو کہ کبھی بھی امیر دیشوں سے غریب دیشوں میں پونجی آتی نہیں ہے، وہ آدمی وت منتری بننے کے بعد کیسے اچانک سے 180 پہ ٹرن کر سکتا، یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا آج تک. اور وہ آدمی ایسے ٹرن کر سکتا ہے انہی دنوں میں جب ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب اس دیش میں فائنینس منسٹر نہیں بنے تھے. اس کے 1-1.5 مہینے پہلے فرانس کا ایک اخبار ہے، اس کا نام ہے لمونڈ، اس میں ایک نیوز آئٹم چھپ گیا تھا. کیا نیوز آئٹم تھا؟ ہندوستان میں کوئی بھی پارٹی ستا میں آئے، ڈاکٹر منموہن سنگھ ول بی دا نیکسٹ فائنینس منسٹر آف انڈیا. یہ بات میں کہہ رہا ہوں مئی 1991، اور مئی 1991 میں الیکشن نہیں ہوا تھا، الیکشن کا پروسیس چل رہا تھا. راجیو گاندھی زندہ تھے، ان کی مرتیو 20 مئی 1991 کو ہوئی ہے. یہ اس کے پہلے کا آرٹیکل ہے اور یہ لمونڈ میں چھپا. میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے کٹنگ بھیجی،
और कहा कि देखो ये क्या है। तो मैंने भी आश्चर्य से उसको पढ़ लिया कि कैसे लमोंड कहता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह विल बी द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उसमें खबर क्या है, फ्रेंच में जो वाक्य है उसका हिंदी में करके आपसे कह रहा हूं कि हमारे विश्वस्त सूत्रों की जानकारी के अनुसार डॉक्टर मनमोहन सिंह अगले फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, जो चाहे जो पार्टी सत्ता में आ जाए। और वो कटिंग लेके मैंने मेरे कुछ दोस्तों को दिखाई तो कई लोग कहते थे कि यार पता नहीं फालतू की बातें हैं, ऐसी तो चलती रहती है, ब्रिटेन के बहुत सारे टैबलॉइड्स हैं जो कुछ ना कुछ छापते ही रहते हैं, फ्रांस में भी कुछ ऐसे ही चल गया होगा तो उन्होंने भी लिया कि कहीं मस्ती में छाप दिया होगा। लेकिन बाद में जिस दिन मैंने देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर की शपथ दिलाई जा रही है तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा यह हुआ कैसे। मेरे एक परिचित हैं वर्ल्ड बैंक में काम करते, उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरे इलाहाबाद के रहने वाले, तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी ये क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि तुमको मालूम नहीं है, वर्ल्ड बैंक ने बहुत पहले तय कर लिया था कि मनमोहन सिंह को ही फाइनेंस मिनिस्टर बनाना। तो मैंने उनसे पूछा कि वर्ल्ड बैंक का मनमोहन सिंह से क्या रिश्ता है। तब उन्होंने मुझे बताया कि मनमोहन सिंह वर्ल्ड बैंक में 10 साल तक सर्विस कर चुके और जो वर्ल्ड बैंक का कर्जा उन्होंने लिया है वो कर्जा उनको चुकाना है, तो वो कर्जा चुकाने के लिए वर्ल्ड बैंक उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनवा रहा है और तुम में से किसी में दम नहीं है जो उसको रोक सके फाइनेंस मिनिस्टर बनने। तो मैंने सोचा कि इस देश की पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को क्या हुआ, माने हमारा पार्लियामेंट तय नहीं कर रहा है कि हु विल इज द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये वर्ल्ड बैंक तय कर रहा, आईएमएफ तय कर रहा। और वर्ल्ड बैंक क्यों तय कर रहा, आईएमएफ क्यों तय कर रहा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को अपनी कुछ कंडीशनैलिटीज इस देश में लागू करानी है तो उनको अपना आदमी चाहिए, तो उन्होंने अपना आदमी रखवा दिया इस देश में। बाद में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए तो हिन्दुस्तान में अपने पूरे टेन्योर में वो आदमी 1.25 रूपये टोकन मनी लेता था तनख्वाह के रूप में। तो मेरे दिमाग में रोज प्रश्न उठता था कि बाकी का पैसा कहां से आता है मनमोहन सिंह। तो निश्चित रूप से वर्ल्ड बैंक के पे रोल पर काम करने वाला आदमी इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर बना, और वर्ल्ड बैंक के पे रोल पर काम करने वाला आदमी जब फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा तो वर्ल्ड बैंक की बातें करेगा। जो आदमी फाइनेंस मिनिस्टर बनने के पहले एक बात कहता हो और फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद ठीक उसके उल्टी बातें कहना शुरू कर देता हो तो ऐसे आदमी को तो मैं सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉस्टिट्यूट के अलावा और कुछ कह नहीं सकता। शायद आपको लगा है कि ये मैंने बहुत कड़ी बात कह दी है लेकिन यही सच्चाई है। एज ए गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ तीन तीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो कुछ कहते थे उसका ठीक उल्टा काम उन्होंने जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो किया है इस देश में, और उसके नतीजे इस देश को भुगतने पड़ेंगे अगले 20 साल में जो कुछ वो करके चले गए। और उसके बाद नाटक चला इस देश में, एक बार मनमोहन सिंह ने इस्तीफा दिया, आप शायद याद करिए इस बात को। तो जैसे ही मनमोहन सिंह ने इस्तीफा देने की बात कही तो सबसे पहली चिट्ठी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की आई हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कि आप उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे, और नहीं किया गया उनका इस्तीफा स्वीकार। जबकि कांग्रेस के अंदर मनमोहन सिंह के खिलाफ भयंकर रिजेंटमेंट था, बहुत सारे कांग्रेसियों को उनका ग्लोबलाइजेशन पचा नहीं था, उनका लिबरलाइजेशन भी नहीं पचा, और सारे कांग्रेसी एक स्वर से मान करते थे कि आपके इस ग्लोबलाइजेशन ने किया क्या। वो वायदा करते थे कि मैं 3 महीने में महंगाई को जमीन पे ला दूंगा, तो पता चला 3 महीने में महंगाई और 3 गुना बढ़ गई, तो कांग्रेसियों को लगा कि हमारा तो वोट बैंक चला गया, तो मनमोहन सिंह के खिलाफ जमकर अटैक होना शुरू हुआ, तो मनमोहन सिंह को रिजाइन करने की स्थिति पैदा कर दी इन लोगों ने। लेकिन वर्ल्ड बैंक से पहली ही चिट्ठी आई इस देश में कि आप उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे, और उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। और यही नाटक अभी ताजा ताजा कुछ दिन पहले हुआ चिदंबरम साहब के साथ। आपको याद है चिदंबरम साहब ने एक बार धमकी दी कि मैं रिजाइन कर दूंगा, तो जैसे ही चिदंबरम की धमकी आई वैसे ही वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का बयान आ गया अखबार में कि चिदंबरम साहब अगर चले जाएंगे तो लिबरलाइजेशन का क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, माने वर्ल्ड बैंक के इंटरेस्ट का क्या होगा। सीधी सी बात वो कहनी चाहिए, तो वो ये नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड बैंक के इंटरेस्ट का क्या होगा, वो कहेंगे लिबरलाइजेशन का क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। यही मनमोहन सिंह के जमाने में करते हैं, और ये कितने बड़े लेवल के इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट हो सकते हैं। चिदम्बरम साहब मनमोहन सिंह से 2 कदम आगे हैं, ये लंदन गए थे, अक्टूबर 96 की बात कह रहा हूं, अक्टूबर 96 में ये लंदन गए थे, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट क्या दिया, कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज हिंदुस्तान में 200 साल के लूटने के लिए आए थे, मैं आपको फिर से इनवाइट करने आया हूं कि अगले 200 साल के लिए फिर इस देश में आप लूटने के लिए चले आइए, एंड देयर विल बी अ ह्यूज रिवार्ड फॉर यू। क्या कहें इसको, सिवाय ट्रेटर के दूसरा कोई शब्द मुझे मिलता नहीं जो मैं चिदंबरम के लिए इस्तेमाल करूं। कि एक ऐसा व्यक्ति इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर है जो लंदन में जाके कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 200 साल के लिए आई थी और आपने हमको लूटा, मैं आपको दोबारा निमंत्रण देने आया हूं कि अगले 200 साल के लिए फिर आ जाइए और लूट कर ले जाइए इस देश को। तो ऐसे लोग जब इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर बनना शुरू हो जाए तब तो इस देश का बंटाधारी होने लगा, और तब मुझे शक होने लगा है कि सच में कोई लिबरलाइजेशन चल रहा है क्या। और मैं मानता नहीं कोई लिबरलाइजेशन चल रहा है, एक्चुअली ये रिकॉलोनाइजेशन का एक दूसरा प्रोसेस चल रहा है, और उस लिबरलाइजेशन के नतीजे क्या निकल रहे हैं, विदेशी पूंजी के स्तर पे कुछ आया नहीं है आपके देश में, जो कुछ आया उससे ज्यादा चला गया। और अगर एक दूसरा हिसाब और जोड़ना शुरू कर दूं कि फाइनेंशियल मार्केट में जो थोड़ी सी विदेशी पूंजी आ गई थी उससे नतीजा क्या हुआ था, 100-150 रुपए वाला शेयर 1500 में पहुंच गया था, 2000 में पहुंच गया था, जिसको देखो वो शेयर खरीदने के लिए पागल था इस देश में। मुझे वो दिन याद है कि मेरे घर के सामने जो पान बेचता है इलाहाबाद में, वो रोज सवेरे सवेरे आता था, मुझसे पूछता था कि राजीव भाई आज एसीसी का दाम क्या है। तो मैं कहता था भाई तुमको क्या लेना देना एसीसी के, नहीं मैंने एसीसी खरीदा। मैंने कहा कहां से तुम्हारे पास पैसा आ गया, कि बीवी के गहने गिरवी रखे हैं, मैंने एसीसी खरीदा। क्या होने वाला है, कहने लगा आप तो बेवकूफ आदमी, आपको मालूम नहीं मैं रातों रात लखपति होने जा रहा हूं, आज ये 1500 का है कल 2000 का हो जाएगा, फिर 3000 का हो जाएगा, फिर 3500 का हो जाएगा, आप देखिए रातों रात लखपति हो जाऊंगा मैं। और ऐसे हिंदुस्तान में बहुत इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद करके शेयर बाजार में पैसा लगा दिया, जिन्होंने बीवी के गहने गिरवी रख के शेयर बाजार में पैसा लगा दिया, जिन्होंने मारुति की कार गिरवी रख के शेयर बाजार में पैसा लगा दिया। और मनमोहन सिंह उस समय चिल्ला रहे थे कि देखिए ग्लोबलाइजेशन का नतीजा निकल रहा है, इकोनॉमी बूम कर रही है, माने शेयरों के दाम बढ़ रहे हैं, तो मनमोहन सिंह कहते थे कि इकोनॉमी बूम कर रही है। कोई भी रद्दी से रद्दी अर्थशास्त्री इस बात को कह नहीं सकता कि शेयरों के दाम बढ़ने से कंपनियों की अपनी प्रोडक्टिविटी पे कोई गहरा असर पड़ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी के शेयर के दाम बढ़ रहे हो वो कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं, ये बहुत बार इन्फ्लेटेड होती है चीजें। लेकिन मनमोहन सिंह जैसा आदमी जब पार्लियामेंट में यह तर्क देता था कि देखिए मैंने जो लिबरलाइजेशन किया, जो ग्लोबलाइजेशन किया, उससे शेयर बाजार में इतना तेज उछाल आया है, एक दिन पता चला कि बुलबुला फट गया, गुब्बारे में जितनी हवा भरी थी वो सब फट गई। तो पता चला कि 2500-3000 से बिकने वाला शेयर जमीन पे आके गिरा, 100 रुपए में 150 रुपए में 200 रुपए में कोई खरीदने को तैयार। हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट एक कमेटी बिठाई, पार्लियामेंटरी कमेटी बिठाई गई रामनिवास मिर्धा की अध्यक्षता में, उन्होंने काम किया, 2-3 महीने में रिपोर्ट आई कि ये जो विदेशी पूंजी को हमने छोड़ दिया शेयर बाजार में आने के लिए, वो जो खोल दिया हमने शेयर बाजार में आने के लिए, उसी का नतीजा निकला कि उन्होंने पहले शेयरों के दाम बढ़ा दिए और हिंदुस्तान के लोगों ने क्या किया कि अपने खून पसीने की कमाई को शेयर बाजार में झोंक दिया ले जाके, फिर जब उनको जरूरत पड़ी तो यहां से लेकर उड़ गए, तो पता चला जमीन पे आके हम गिरे। कमेटी की फाइंडिंग्स है, ये मेरी नहीं, कि हिंदुस्तान में विदेशी पूंजी निवेशकों ने कुछ हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके हिंदुस्तान के लोगों का 70,000 करोड़ लूट लिया। इतनी बड़ी डकैती आपके देश में पड़ गई और आपने किसी ने एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई। और बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग जो अपने आप को 30 मारखा कहते थे, जो कहते थे कि शेयर बाजार की नब्ज तो हमारी सिप से रखी हुई है, वो सब मुंह छुपा के पता नहीं कहां डुबक गए, नजर नहीं आते। इसी देश में हुआ ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर कि एक एक कंपनी आई जिसने 400 करोड़ मार्केट से उठा लिया, पता चला कि वो कंपनी आज कहीं है भी नहीं। जिस कंपनी ने कभी नट बोल्ट नहीं बनाया, जिन्होंने कभी प्रोडक्शन के क्षेत्र में कोई एक नए पैसे का काम नहीं किया, वो आए और मार्केट से 420 करोड़ उठा ले गए, कोई 480 करोड़ उठा ले गया, कोई 500 करोड़ उठा ले गया, कोई 1000 करोड़ उठा ले, मरे लूट की खुली छूट मची हुई। कोई कानून नहीं था, कोई रोक नहीं थी, कोई गाइडलाइंस नहीं थी। मनमोहन सिंह साहब यही चिल्ला रहे थे कि देखिए इकोनॉमी में तरक्की हो रही है इस देश में, मालूम नहीं था कि इस देश के लोगों की जेब काटी जा रही। और अंत में पता चला कि हमको जो नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है, देश के लोगों के खून पसीने की कमाई का 70,000 करोड़ रुपया डूब गया इस शेयर बाजार, जो वापस आएगा किसी को कुछ पता नहीं। और मैं पूछता हूं कि ऐसे समय में मनमोहन सिंह को लाके चौराहे पे कम से कम दो चार बातें पूछ तो लेनी चाहिए कि एक जमाने में आप चिल्लाया करते थे पार्लियामेंट के अंदर कि देखिए ये मेरे लिबरलाइजेशन का कमाल है कि शेयर बाजार चल रहा है, फिर क्या हुआ इसमें, क्यों डूब गया 70,000 करोड़ रुपया, कौन जिम्मेदार है इसका, किसी की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि नहीं इस देश में, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनी। और उसी कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किए थे मनमोहन सिंह को कि ये सारा तमाशा सिटी बैंक के इशारे पर हुआ, हर्षद मेहता तो उसमें सिर्फ एक कठपुतली की तरह से काम करता रहा, ये मैं नहीं कहता, पार्लियामेंट्री कमेटी की फाइंडिंग्स है। और कमेटी ने ये रिकमेंडेशन किए कि सिटी बैंक ऑफ इंडिया को हिन्दुस्तान से बिस्तर बांध के भगा देने की जरूरत है, तो मनमोहन सिंह ने स्टेटमेंट किया कि नहीं, हम सिटी बैंक ऑफ इंडिया को अगर भगा देंगे तो गलत सिग्नल जाएंगे दुनिया में। माने चोर को चोर नहीं कह सकते हम, डकैत को डकैत नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमारे सिग्नल्स गलत चले जाएंगे। कौन सा देश है ये और कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर इस देश को रूल करता है? दुनिया के किसी भी दूसरे देश में अगर अमरीका में ही ये स्कैम हुआ होता, हिन्दुस्तान की जगह अमरीका को रखकर देखिए, और अमरीका में ये स्कैम हुआ होता और काश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा उसमें इन्वॉल्व होता, तो अमेरिकन सरकार ने एक मिनट की देर नहीं की होती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वहां से रवाना करने। ये हम पॉलिटिकल प्लेयर कंट्री में रहते हुए मैं कह रहा हूं इस देश में कि सिटी बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सारे सबूत होने के बावजूद इस देश में सिटी बैंक ऑफ इंडिया को हिन्दुस्तान से नहीं भगाया गया, क्योंकि मनमोहन सिंह नहीं चाहता। और कभी कभी मैं ये आरोप करता हूं कि मनमोहन सिंह कोई मनमोहन सिंह नहीं है, वो अमरीका का 101% एजेंट है, जिसने इस देश की इकोनॉमी को इतने बड़े लेवल पे ले जाकर पटक दिया। और आपको मालूम है जो पैसा डूब गया उसकी वजह से जो रिसेशन है मार्केट में वो आज तक खत्म नहीं हो रहा, कितने कारखाने बंद हो गए इस देश में, हजारों हजारों प्रोडक्शन यूनिट इस देश में बंद हो गए क्योंकि उनका पैसा शेयर बाजार में। मैं मेरे उत्तर प्रदेश के बारे में बात करता हूं, नोएडा के आसपास करीब 80,000 छोटे छोटे प्रोडक्शन यूनिट थे जो डूब गए क्योंकि उनका पैसा शेयर बाजार में फंस गया, वो चल नहीं सकते। और कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं कि जो करोड़पति बनने चले थे रोडपति हो गए, सड़क पे खड़े, डूब गया पैसा शेयर बाजार। और ये जो डूबा हुआ पैसा है इसको वापस निकालने के लिए न मनमोहन सिंह के पास कोई तरकीब है न चिदम्बरम के पास कोई, कैसे आएगा ये पैसा? ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ, ये लिबरलाइजेशन नहीं हुआ, आपकी लूट हुई। लूट होने के तरीके बदलते रहते हैं, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी, अंग्रेज आते थे तो बंदूक और तलवार के दम पर लूट कर ले जाते थे आज, और अब तरीका बदल दिया है, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर आते हैं और आपके देश से 70,000 करोड़ लूट कर ले जाते हैं और आप खामोशी के साथ बैठे बैठे देख रहे हैं। पता नहीं कब हर्षद मेहता को इस देश में फांसी की सजा मिलेगी, मुझे मालूम नहीं, पता नहीं कब मिलेगी, शायद हो सकता है 2 साल के बाद आप भी भूल जाए, मैं भी भूल जाऊं कि इस देश में इतना बड़ा एक स्कैम भी कोई हुआ है। और आप देख लीजिए जब से ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन है तो ये स्कैम का ही हिस्सा, जिसको आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं वो स्कैम का ही एक दूसरा हिस्सा, जितने तेजी से ग्लोबलाइजेशन चला उतनी तेजी से इस देश में घोटाले चले। 1991 से 1997 के बीच में जितने घोटाले हुए हैं उसमें पार्लियामेंट की फाइंडिंग्स है, मेरी फाइंडिंग्स नहीं, कि हिंदुस्तान के लोगों के खून पसीने की कमाई का 70,000 करोड़ डूब गया, ये वो कहते हैं। तो 20,000 करोड़ आया और 70,000 करोड़ हमारा डूब गया, ये है ग्लोबलाइजेशन का असली पिक्चर। कोई पूंजी वहां से आ नहीं रही है, आपका लूट करके आपके